सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आरोग्य वाणी कार्यक्रम में संज्ञा का नमस्कार। श्रोताओं, जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं। ये जो कुछ होता है ना, इसमें कुछ कुछ ऐसा होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी के अलावा और भी तत्व प्रदान करता है। अब ये जो कुछ आपने अपने शरीर के अंदर डाला तो हमारा मशीन रूपी शरीर उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ ऐसे तत्व जिनको हम माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं, अवशोषित कर लेता है और शरीर में एकत्र करके रख लेता है। अपनी पसंद की या नापसंद की के आधार पर आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में जो अवयव कम होगा या ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उससे संबंधित रोग आपके नज़दीक ज़रा जल्दी आएंगे। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? किस अवयव की कमी से क्या रोग, किन माइक्रो या मैक्रो तत्वों के कॉम्बिनेशंस ज़रूरी, इस तरह की नफ़ा नुकसान वाली बातें आज हम करेंगे कार्यक्रम में। ज़रा ध्यान से सुनिएगा अपने और अपने परिवार वालों के संदर्भ में, क्योंकि 20 साल के अनुभव से गुजर चुकी सीनियर डाइटिशियन कविता पुजारा जी आज हमारे साथ हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। नमस्कार कविता जी, सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि हम सिर्फ सुनते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम की गोली खा लो, इसके शरीर में सोडियम की कमी हो गई है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनका हमारे शरीर में क्या रोल होता है? थोड़ी सी मात्रा में ही ये शरीर में होने चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में, ये सारी जानकारियाँ हम चाहते हैं आपसे।
जैसे आपने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा, तो मैक्रो और माइक्रो ये दो टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। उसमें एक का काम होता है एनर्जी देना हमारी बॉडी को, और दूसरे का काम होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो जो पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स इसको शामिल करते हैं, और उसके बाद की कैटेगरी आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसमें हम विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज अलग हैं, दोनों के फंक्शंस अलग हैं। हालांकि फर्क बहुत कम है, तो लोगों को जनरली इस चीज का उतना डीप में नॉलेज नहीं होता कि मैक्रो माइक्रो क्या है। जनरली वो ये जानते हैं कि हाँ, आजकल थोड़ा सा लोगों में कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन थोड़ा मसल डेवलप करता है, फैट हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम तो करता ही है, साथ में ग्रोथ में भी हेल्पफुल है।
मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें शामिल होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स।
विटामिन्स के भी दो कैटेगरीज हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सेकंड होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उसको बॉडी में अब्सॉर्ब होने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि काफी सारे बच्चे जीरो फिगर पे जा रहे हैं, काफी लोग अपने आप डाइटिंग करने शुरू कर देते हैं, और डाइटिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम करते हैं हमको ऑयल नहीं खाना है, हमको फैट नहीं खाना है। तो फैट को जितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, हर चीज की जरूरत है, और अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा रोक देते हैं तो वो चीज हमारे दूसरे चीजों को अफेक्ट करती है। आइदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी बॉडी में, अगर आपने एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स ले भी लिया है, आपने विटामिन्स भी ले रहे हैं, अब आपने फैट तो कम कर दिया, बट आप ऊपर से ले रहे हो सप्लीमेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, कई विटामिन ए ले रहे हैं, कई लोग थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स आजकल मिलते हैं मार्केट में, तो वो उसको शुरू करते हैं, बट आप विटामिन्स तो ले रहे हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है हमारे शरीर में, आप वही नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में रिजल्ट कहाँ से दिखेगा? उसके बाद भी आप बोलोगे कि अरे मुझे लेजी फील हो रहा है, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे नाखून बार बार क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं।
कोई भी चीज अगर हमको लेनी है, बराबर मात्रा में लेनी है, शरीर में जितनी जरूरत है उतनी लेनी है, तो उसकी जानकारियां हमको कहाँ से मिल सकती?
उसके लिए आपको जानकारी की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें हमारी सारी चीजें शामिल होती है और हमारी बॉडी को एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को हेल्दी सारा सपोर्ट मिलता है।
हम फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल?
फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में विटामिन ए, डी, ई और के, चार विटामिन्स फैट सॉल्युबल है। मतलब आपको अगर ये ले रहे हैं तो बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में फैट भी चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन ये लॉन्ग टर्म तक हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको उसका डेली सप्लीमेंट लेना है। जैसे अभी सीजन के हिसाब से बताती हूँ मैं आपको कि अभी गर्मी की सीजन है, इसमें आम काफी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, कच्ची कैरिया काफी अच्छी आ रही है और ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जो बहुत ज्यादा वेट कॉन्शियस नहीं है, अगर वो अभी आम खाते हैं, या विटामिन ए सोर्स में पपीता भी आता है, अगर आप पपीता ले रहे हो तो वो आपके लीवर में स्टोर रहेगा।
जब जरूरत होगी तब वो,
जब जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हम रोज सारी चीजों को ले पाए, विटामिन ए का सोर्स भी लें, विटामिन बी भी लें, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, हम सारे सोर्सेस को जरूरी नहीं है रोज हम ले पाए। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि वो अगर हम किसी सीजन में सफिशिएंट ले लेते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वो हमारी बॉडी में अप्रोक्स 6 मंथ तक हमारे लीवर में स्टोर रहता है और जब भी उसकी जरूरत है वो धीरे 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 उसके अकॉर्डिंग रिलीज होकर हमारी बॉडी को सप्लीमेंट देता रहे। बट वाटर सॉल्युबल विटामिन जो सेकेंड है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो शामिल होते हैं, इनका आपको रेगुलर कंजम्पशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ये आपको डेली थोड़ा थोड़ा लेना है और ये ऐसी चीजों से मिलता है जो आप डेली खाते हो, इसलिए इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है कि हमको इसकी डिफिशियंसी होगी। बट कई जगह इसकी डिफिशियंसी भी होती है ड्यू टू वो प्रॉपर नहीं लेते हैं। जैसे कई लोग हैं वो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ आलू पे स्टिक होते हैं। मेरे यहाँ काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, कुछ बच्चे स्पेशली ऐसे होते हैं जो हरी सब्जी खाना ही नहीं चाहते हैं। उनकी सब्जियों में फेवरेट उनकी मम्मी बताती है आइदर भिंडी है, उनको सूखी भिंडी चाहिए, या फिर आलू की सब्जी चाहिए रोज। तो ऐसे केसेस में इन विटामिन्स के भी डिफिशियंसी के प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी आप जितना खट्टा खाओगे, सबको पता है कि खट्टी चीजों में हमको विटामिन सी मिलता है, तो आप सिट्रस फ्रूट्स, कुछ नहीं, नींबू ले लीजिए, नींबू का शरबत पी लीजिए, नींबू का अचार ले लीजिए, आंवला जिस सीजन में आप आंवला स्टोर करके रख लीजिए, आइधर आप उसको आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, सुपारी बना लीजिए, जिस वे में लेना चाहते हैं। और आंवले के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो हम हीट में एक्सपोज करने के बाद भी उसका विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता,
डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब जिस पदार्थ में जो विटामिन या मिनरल मौजूद है, क्या वो शरीर में जाने के पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाता है?
जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और बीटा कैरोटीन है ना, ये अगर हम लाइट में एक्सपोज करके रखते हैं तो इसमें से भी लॉस होने के चांसेस हैं। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हम लोग दूध लेते हैं, दूध लेने के बाद हमने गर्म किया, ठंडा हुआ, हमने फ्रिज में स्टोर करके रखा, सिंपल सी बात है। अब अगर फ्रिज में आपने गंज को खुला छोड़ दिया है तो उसका विटामिन ए आपके फ्रिज की लाइट से डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आपने उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में भी स्टोर किया हुआ है या लाइट के एक्सपोजर में रखा है तो भी उसका विटामिन ए काफी हद तक लॉस हो सकता है। तो हमको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना।
सचमुच छोटी छोटी बातें तो बहुत सी हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। जैसे भी आपने बताया कि फ्रिज की लाइट से भी विटामिन ए दूध का डिस्ट्रॉय हो रहा है, या फिर आंवले को हीट मिलने से उसके अंदर के विटामिन्स नष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे ही क्या सब्जियों को ज़्यादा पकाया जाता है या ढक के नहीं पकाया जाता है या कुकर में पकाया जाता है, तो उससे क्या नुकसान और फ़ायदे होते हैं?
अगर हम तेज आँच पे खाना पका रहे हैं तो उससे भी ये चीज़ों का लॉस होने की संभावना बनी रहती है। तेज आंच के साथ अगर आप सब्जी में ढक्कन नहीं ढका हुआ है उस बर्तन पे और आप खुला करके पका रहे हो, कई बार हम कलर के लिए थोड़ा सा रहते हैं कॉन्शियस कि उसमें कलर अच्छा आता है, हम ढक्के नहीं पकाएंगे, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसके कारण भी ये विटामिन्स के लॉस होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा है, पकाने के बाद आपने खुला छोड़ा हुआ है काफ़ी देर तक, तो उससे एक कंटेमिनेशन तो होगा ही होगा। सेकेंड थिंग, उसमें मौजूद जो विटामिन और मिनरल्स है उसके लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और दूसरा, सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो अगर जैसे जनरली लेडीज की हैबिट होती है सब्जी काटने के बाद धोती है, तो अगर हम ये सब्जी काट के फिर धोते हैं तो बारीक बारीक कटा काफ़ी पीसेस हो गए, अब उसको हमने पानी में डाला तो एक्सेस में विटामिन इसमें से लॉस हो सकता है। चावल जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें भी हम इस बात का थोड़ा अगर ध्यान रखें कि हम उसको बहुत रगड़ के ना धोएं, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉलिश के दौरान काफी सारा उसमें से लॉस हो चुका होता है, और उसके बाद अगर हम उसको रगड़ रगड़ के 2 से 3 बार धो रहे हैं तो उसके कारण भी उसमें जो मौजूद थोड़ा बहुत विटामिन बी बचता है वो भी उसमें से लीच आउट हो। कुछ सब्जियां जैसे हम बॉइल करने के बाद फिर उसका पानी निकाल देते हैं, फिर हम उस सब्जी को पका रहे हैं,
असली चीज तो निकाल ली।
हाँ, विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन तो सारे लीच आउट कर दिए, क्योंकि हीट में थोड़ा लॉस हुआ, हीट के साथ उस पानी में भी लॉस हो गया, पानी को आपने फेंक दिया। तो अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर हम ध्यान दें कि सब्जियां हमेशा ढककर पकाएं, आंच एकदम धीमी रखें और एक्सेस हीट नहीं देना है उसको, चावल को रगड़ के ज्यादा ना धोएं, एक लिमिट अमाउंट में हमको उसकी इम्प्यूरिटीज निकालना है, हम उसको हल्के हाथ से धो के भी निकाल सकते हैं। सब्जियां किसी वजह से अगर हमने बॉइल की है थोड़ा पानी डाल के, तो हम उस पानी को आइदर आटा गूंथने में यूज कर लें, दाल में डाल दें, या फिर हम सूप वगैरह बनाने में उसको यूज कर लें, तो वो सारा विटामिन हमको वापस मिल जाएगा।
तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो विटामिन्स को अपने शरीर में रेगुलर रूटीन में हम लगातार एब्जॉर्ब करवाते रह सकते हैं, वरना यही सोचते रह जाएंगे आप कि हमने तो लगातार इतना कुछ खाया लेकिन हमारे शरीर में कुछ लगता ही नहीं है।
ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में आपने बताया
जी,
विटामिन ए के बी कॉम्प्लेक्स वगैरह के बारे में, इनकी कमी से शरीर में क्या क्या परेशानियां होती हैं, इनकी अगर अधिकता हो जाए शरीर में तब क्या परेशानियां होती हैं, हमें इसकी जानकारी चाहते हैं।
जनरली इसके बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। जैसे काफी बार ये होता है कि कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं, बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, अगर हम उसको पहले शुरुआती दौर में ही पहचान ले तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो आगे तक नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए अगर हमको इसकी जानकारी थोड़ी भी होगी तो हम उसको बचा सकते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। ये हमारे सबको पता है कि आंखों के लिए, विजन के लिए, रोशनी के लिए, दूसरा हमारी स्किन के लिए, सभी के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो अब अगर हम इसको कम मात्रा ले रहे हैं, हमारी बॉडी में इसकी कमी हो रही है, तो सबसे पहला असर इसका स्किन पे आना शुरू होता है, हमारी विजन पे आना शुरू होता है, कमजोरी शुरू हो जाती है। और अगर हम इसको एक्सेस में ले रहे हैं तो हाइपर विटामिनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है हमको। विटामिन ए हमको अगर आप दूध और दूध से बने पदार्थ ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। सेकंड थिंग है, अगर कोई नॉनवेज पर्सन है तो वो उसको एग योक से बहुत अच्छा विटामिन ए मिल सकता है। तीसरी, जो वेजिटेरियन है, कॉमन पर्सन है, उसके लिए हम ट्रैफिक सिग्नल्स के तीन कलर बोलते हैं, आप तीनों कलर को ध्यान में रख, अगर आप ये तीनों कलर अपनी डाइट में शामिल कर रहे हो तो आपको कभी विटामिन ए की कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल, हरी सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं आप सबको ध्यान में रखते हुए चलो, या रेड कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जैसे हम लोग बोलते हैं बीट रूट है, तरबूज जो अभी काफी अच्छी मात्रा में आ रहा है, हमने वो लिया तो भी हमको मिल गया। पीली चीजें बहुत कॉमन है, बहुत सस्ती है, कुमड़ा काफी चीप सोर्स है, पपीता आइदर कच्चा हो या पका हो, जैसे अभी मैंने आम भी बताया। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार इतनी महंगी चीजें कैसे खाएंगे, बट ये हमारे आसपास बहुत आसानी से और बहुत सरलता से मिलने वाली चीजें हैं जो हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं।
विटामिन ए के बाद अब हम बात करते हैं विटामिन बी की।
बी में हमारे काफी सारे क्लासेस हैं, उसमें मेनली हम थायमिन को देखेंगे। अभी पहले थायमिन की कमी से हमारे शरीर में बेरीबेरी नाम की एक बीमारी हो सकती है, दूसरा हार्ट की प्रॉब्लम भी इससे रिलेट करती है। एक्सेस में अगर हम लेते हैं तो कई बार आप महसूस करोगे कि अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, हमको कारण समझ में नहीं आता है, ना हम बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़े हैं, ना हम भाग दौड़ की है, ना हम थके हैं, बट स्टिल कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी हार्ट बीट, धड़कन हमारी अचानक इतनी तेजी से क्यों चल रही है, तो उसका एक कारण विटामिन B1 की कमी भी हो सकती है। और विटामिन B1 हमको अनाज है, दालें हैं, इन सब में हमको काफी अच्छी मात्रा में, हरी पत्ते वाली सब्जियां, नट्स मतलब जो हम सूखे मेवे कहते हैं अगर हम वो ले सकते हैं, तो वो भी अगर हमने थोड़ा एटलीस्ट हमने 8-10 भी नट्स ले लिए हैं पर डे, तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेम वे में विटामिन B2 दैट मीन्स राइबोफ्लेविन, इसका भी अच्छा सोर्स है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं। अच्छा, इसकी कमी से जनरली कई बार ये लगता है कि कई लोगों को होंठ के बाजू में क्रैक्स होने लगते हैं, फटते हैं होंठ, खून निकलता है, कई बार लगता है कि छाले आ गए हैं हमको, तो बार बार छाले क्यों आ रहे हैं हमको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुंह के अंदर के
छाले भी इसका एक कारण है, तो अगर ये सफिशियंट ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हमारे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, या कई बार झुनझुनी आ रही है, जैसे कई लोगों को लगता है कि हमको सिर्फ सब्जियां खानी है तो भरपूर खाते हैं, या फिर चावल बहुत एक्सेस में ले लेते हैं, तो विटामिन बी या फिर इन सब के लेने के बाद वो बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं, तो ये अगर एक्सेस में होता है तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स होती है।
B1 और B2 की तरह ही शायद B3 भी विटामिन का नाम है ना,
नियासिन है कि B3 जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोएंजाइम का काम भी करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, और ये भी हमको होल सीरियल साबुत अनाज से मिल जाता है, पल्सेस से मिलता है, नट्स से मिलता है। और इसकी कमी से कई बार मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम भी हो सकता है।
अच्छा।
जनरली ये प्रॉब्लम मालनरिश्ड बच्चों में बहुत देखने को मिलती है,
कुपोषित
बच्चों में। आजकल बच्चों के साथ साथ बड़े भी कुपोषित होने लगे हैं और अच्छे खासे घर के बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं ड्यू टू रॉन्ग मेथड ऑफ डाइटिंग। इसको अगर ध्यान में रखें तो ये चीज़ नहीं होगी। अगर हम इसको एक्सेस में लेते हैं तो कई बार हमको नॉशियटिक फील होता है, उल्टी होने लगती है। मतलब कई बार क्या होता है कि बॉडी हमारी उसको संभालने की कैपेसिटी में नहीं होती है और हम उसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या उसके साथ हमको जो कॉम्बिनेशन में लेना है विटामिन बी और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए आपको विटामिन बी चाहिए। बैलेंस जहाँ गड़बड़ाता है वहाँ फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए जो शुरू में मैंने बैलेंस डाइट का कहा था, बैलेंस डाइट का मतलब है आपकी डाइट में अनाज चाहिए, दालें चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। वेजिटेबल्स में हरी पत्ते वाली सब्जियां, कंद वाली सब्जियां और जो सीजनल सब्जियां मिलती हैं। उसके साथ अगर आप दिन में एक बार फ्रूट ले रहे हैं और दूध से बनी कोई चीज ले रहे हैं, ये आपका पूरा बैलेंस डाइट।
इसके बाद फिर दूसरी चीजें खा सकते हैं,
अपने शरीर के हिसाब से।
विटामिन सी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसकी अधिकता या कमी से भी क्या कुछ बीमारियां होती हैं?
और विटामिन सी वुंड हीलिंग में काफी हेल्पफुल है, घाव को भरने में। और दूसरा, विटामिन सी का एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में काफी हेल्पफुल होता है। जैसे कई लोग प्रेगनेंसी में मैंने देखा है या फिर मैंने एनीमिया में देखा है, आंगनवाड़ी में आयरन की फॉलिक एसिड की टेबलेट्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट साथ में उनको कॉम्बिनेशन में एब्जॉर्ब करने के लिए कोई विटामिन सी की सलाह नहीं दे पाता है। तो विटामिन सी नहीं लेने से हमारी बॉडी में हमने जो एक्सेस में आयरन लिया है वो भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो हमारे शरीर में जो एनीमिया है या जो खून की कमी है वो दूर नहीं हो पाती। अच्छा। और हमको लगता है कि हम तो सारा सप्लीमेंट ले रहे हैं फिर भी हमको कमी बनी हुई क्यों है, तो आप कितना भी ऊपर से डाल लो वो रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी से।
खट्टी सब्जियों के अलावा हमने सुना हरी मिर्च में भी होते हैं।
बिल्कुल, हरी मिर्च में भी है विटामिन सी, हरी मिर्च में थोड़ा सा कैल्शियम भी है, तो हरी मिर्च भी अगर लेते हैं तो भी काफी अच्छा है। जैसे गाँव देहात में तो जनरली लोग टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बना के लेते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। हम खुद ये सलाह देते हैं कि जैसे आप लाल भाजी ले रहे हो जो आयरन के लिए बोलते हैं, अगर आप भाजियों में थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दो तो आपको विटामिन सी मिल गया प्लस आपको आयरन मिल गया, आपको अलग से कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो हम कॉम्बिनेशन का भी अगर थोड़ा ध्यान रखें, उसी वे में विटामिन डी है। विटामिन डी के साथ आपको फॉस्फोरस और कैल्शियम का भी ध्यान रखना है। अगर आप फॉस्फोरस कैल्शियम नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तो भी आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तीनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांत के लिए बहुत जरूरी है, कैल्शियम का भी वही है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
आजकल सुनने में बहुत ज्यादा आता है कि विटामिन डी की कमी हो रही है, जबकि सूरज इतना बड़ा सोर्स है और ये चीज पहले सुनने में नहीं आती थी। इसका क्या कारण?
उसका सबसे बड़ा रीजन है, पहले लोग सोकर जल्दी उठते थे और सुबह बाहर निकलते थे काम पे या टहलने, और आज की जो जनरेशन है हमारी लेट नाइट टीवी मोबाइल चैटिंग नेट इन सब में बिजी होती है। सोना हमको एसी में है, रहना हमको सारा दिन एसी में है, और सुबह आप उठ रहे हैं लेट, तो सुबह 8 बजे के बाद सनलाइट जो है वो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल हो जाती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज उसमें से रिलीज होनी शुरू होती है। तो 8 बजे से पहले वाला जो टाइम है वो सन रेज हमारे लिए काफी अच्छी और काफी हेल्दी होती है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग आप उठ के थोड़ा बाहर निकल रहे हो, आधा पौना घंटा वॉकिंग भी कर लेते हो, तो भी आपको विटामिन डी की कमी नहीं हो पाएगी। विटामिन डी तो ले लिया, पर आप अगर कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, जिसके लिए दूध और दूध से बनी हुई चीजें बेस्ट सोर्स है, पर आजकल के बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, फ्लेवर चाहिए उसमें, तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा उनको, विटामिन डी एब्जॉर्ब कहाँ से होगा।
चलिए विटामिन डी के आगे
विटामिन ई, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर से हमको प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल है, और अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो सबसे ज्यादा मसल वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, और एक्सेस में अगर लिया तो कुछ हद तक ये थोड़ा सा हार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर बहुत ज्यादा ये एक्सेस में होता ही नहीं है क्योंकि लोग इसको उतना ज्यादा केयर लेते हैं।
किन चीजों में मिलता है
ये? जनरली हमको वेजिटेबल ऑयल्स जो है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो हमको वेजिटेबल ऑयल्स में मिलेगा, होल ग्रेन्स में मिलेगा, जर्म्स में मिलेगा, अंकुरित चीजों से हमको बहुत अच्छा मिल सकता है। अलसी के बीज में भी काफी अच्छी मात्रा में होता है।
लोग सोचते हैं कि हमें किसी विटामिन की कमी हो रही है बिना किसी डॉक्टर से पूछे या बिना जानकारी के, बस कि हमको आँख से कम दिखाई दे रहा है,
हाँ,
हम हमारी हड्डियों में ताकत कम लग रही है, तो अपने आप विटामिन ए या विटामिन ई की गोलियां शॉप से ले लेते हैं,
तो बहुत गलत करते हैं ये। आपको कभी कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को भी आप निग्लेक्ट मत करो, अपने शरीर को अवॉइड मत।
यूँ तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन इन बताए हुए विटामिन के अलावा हम सोचते हैं विटामिन के और विटामिन B12, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
विटामिन के हमारी बॉडी में शुरू से हमको जरूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो आपको कभी भी अगर घाव हुआ, खून बह रहा है, तो वो आपका जल्दी बंद नहीं होगा। तो विटामिन के का ध्यान रखना भी हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी मोस्टली हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, इन सब चीजों से काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और विटामिन B12 है, जिसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, ये हमको दूध और दूध से बनी हुई चीजें, अंडा, इन सब चीजों से मिलता है। और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ही एक टाइप है, वो डिफिशियंसी के कारण ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है ये।
जैसे विटामिन को बहुत थोड़ी मात्रा में हमको चाहिए होता है शरीर में, और होने जरूरी है हर तरह के विटामिन जो बैलेंस डाइट से हमको मिलते हैं। इसी तरह से शरीर में मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजों को भी हमारे शरीर को चलाने में जरूरत होती है।
बिल्कुल।
तो ये कौन कौन से मिनरल्स हैं, हमको किन चीजों से मिलते हैं?
लाइक विटामिन, मिनरल्स भी निग्लिजिबल अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए, और वो हमको ऊपर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो। और मेनली हमको जिन मिनरल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो है कैल्शियम, जैसे अभी हड्डियों की प्रॉब्लम बताई, दांतों की प्रॉब्लम बताई, और ये विटामिन डी को रेगुलेट करने में भी काफी हेल्पफुल है। कैल्शियम का मेन सोर्स सबको पता है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें। अगर आप दूध नहीं पी सक रहे हो, आप छाछ पियो, आप दही ले लो, पनीर ले लो, आप कुछ भी ले लो, और अगर हम इसको एक्सेस में ले रहे हैं तो उसके कारण हमको किडनी का या गॉल ब्लैडर का स्टोन होने के चांसेस होते हैं, तो उस स्थिति में हमको कैल्शियम को रोकना होता है।
40 प्लस की महिलाओं को कैल्शियम लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। सिंपली गोली लेने से होता है या खान पान से ही नियंत्रित करना चाहिए?
खान पान से कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कमी नहीं है तो, पर अगर एक्सेस में दिख रही है कमी और उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम आयरन को देख लेते हैं। आयरन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है और इसके कारण भी जनरली महिलाएं बहुत सफर करती हैं। तो आयरन के मेन सोर्सेस ग्रीन लीफी वेजिटेबल हर जगह है। कुछ अच्छे रेड वाले रूट्स और वेजिटेबल्स को बोले, उसमें भी काफी अच्छा आयरन, जैसे अनार है, तरबूज है, बीट रूट है, ये सारी चीजों से हमको आयरन अच्छा मिल जाता है। खजूर में काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम अंजीर ले पाए तो अंजीर भी बहुत अच्छा सोर्स है।
एप्पल में भी आयरन बहुत होता है माना जाता है।
एप्पल तो एक हेल्दी हमको एंटीऑक्सीडेंट देने का काम करता है, तो हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, और वो पेन रिलीवर का काम करता है एप्पल। शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप डेली एक एप्पल ले लेते हैं और किसी को बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम है या किसी को पेन की प्रॉब्लम है तो इससे काफी रिलीफ मिलता है। इसके बाद एक एसेंशियल मिनरल आ जाता है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम हमको बोन्स के लिए चाहिए, नर्वस टिश्यू के लिए चाहिए, और हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए चाहिए। ये हमको सीरियल, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और नट्स, ये सब चीजों से मिलता है। और इसकी डिफिशियंसी के कारण भी हमको एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। अभी तो डायबिटीज में भी मैग्नीशियम और जिंक का काफी इंपॉर्टेंट रोल पता चला।
अच्छा,
तो उसमें भी काफी हेल्पफुल है ये,
उसमें लेना चाहिए,
लेना चाहिए हमको, उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। देन फॉस्फोरस, ये कैल्शियम और विटामिन डी से कोरिलेट करता है, और हड्डियों की प्रॉब्लम्स में भी काफी हेल्पफुल होता है अगर हम इसको लेते हैं तो। दूसरा इसके बाद है पोटेशियम और सोडियम। सोडियम पोटेशियम आजकल जनरली ओल्ड एज में हम लोग काफी ऐसे केसेस देख रहे हैं कि इसके इम्बैलेंस के कारण हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, और उस पर्सन को कुछ प्रॉपर ध्यान नहीं रहता है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा पोटेशियम हार्ट में भी काफी हेल्पफुल होता है।
इसमें नारियल पानी आता है,
नारियल पानी आप ले सकते हैं, इसमें आप सभी तरह के अनाज और दालों को शामिल कर सकते हैं। दूसरा फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट्स जितने ताजे और सीजनल फ्रूट्स हैं आप उसको अच्छी मात्रा में लीजिए, तो उसमें भी आपको पोटेशियम काफी हद तक मिलता है, और ये सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट के रूप में भी काम करता है कई बार। और अगर इसकी कमी है किसी को तो जनरली इसमें मसल पैरालिसिस या मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। पोटेशियम के साथ कोरिलेट करता है सोडियम। पोटेशियम है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है बॉडी में, उसको बैलेंस करने का काम करता है।
अच्छा।
और सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करता है। सोडियम अगर हमने कम या ज्यादा लिया तो तुरंत वो बीपी के रूप में हमारे सामने आ जाता है, तो सोडियम हर वे में आपको
बैलेंस में
बैलेंस बनाकर चलना है। और सोडियम हमको जब एक्सेस में होता है तो बेकरी प्रोडक्ट्स पहले अवॉइड करने चाहिए। कई बार ये होता है कि लोगों को बेकरी प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं होती, उनको लगता है हम मीठे बिस्किट खा रहे हैं मैडम, फिर क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो नमक नहीं है। बट बेकरी प्रोडक्ट्स हम जितने लेते हैं उसमें सोडियम एज अ प्रिजर्वेटिव डला हो, अचार अगर आप ले रहे हो ज्यादा उसमें भी एक्सेस सॉल्ट डला हुआ होता है, तो आप अचार को, पापड़ को, ये सारी चीजों को बंद करो। सलाद में भी ऊपर से डाला नमक, कई लोगों को दाल और सब्जी में भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक डाल के चाहिए, तो वो जो एक्सेस में हैबिट होती है वो भी हमारे इसको अफेक्ट करते हैं।
तो कुल मिलाकर के आपने जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में बताया, सबका सोर्स मैं ध्यान दे रही थी दूध और दूध से बनी हुई चीजें, वेजिटेबल और फ्रूट्स,
बिल्कुल, और अनाज और दाल। सिंपल वे में कहा जाए तो हमारा सादा घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी,
वो अगर हम रेगुलर वे में खाते रहे सुबह शाम, तो विटामिन्स की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है, या हमको ये कॉम्बिनेशन और ये वो इतने सारे पचड़े में पड़ने ही पड़े। फिर भी अब आजकल इतनी सारी चीजें, ललचाने वाली चीजें कहना चाहिए, मार्केट में मिलती है कि उससे बच्चों को तो रोकना बहुत कठिन है, बड़े लोग भी अपने आप को नहीं रोक पाते। तो इस बैलेंस डाइट के बाद कितना परसेंट सब बाहर का खाना, या अगर बाहर कुछ खा रहे हैं तो हमको उसके बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने शरीर में बैलेंस बनाए रखने के लिए?
ये बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि सब लोग यही जानना चाह रहे होंगे शायद इसके बाद कि अब हम खाएं तो खाएं क्या, घर का खाना खा के गुजारा कैसे करें, क्योंकि बाहर जाना जरूरी है, यंगस्टर्स हैं, कैंटीन में खाना जरूरी है, पार्टी करना जरूरी है। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखें कि आप बहुत ऑयली स्पाइसी फूड से बचे, जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, मतलब जंक फूड जो है, मैं यहाँ ये डायरेक्ट वे में ये कहना चाह रही हूँ कि हमको जंक फूड की आदत से बचना है। आपने हफ्ते 10 दिन में एक आध बार कहीं पार्टी की है, एक आध बार कहीं कुछ खाया है, उससे आपकी हेल्थ में असर नहीं होगा, बट अगर ये डेली आपके रूटीन में शामिल है तो आपके शरीर में इसके साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। किसी भी चीज की कहते हैं ना, अति की गति नहीं होती, बस उसी को हमको ध्यान में रखना है, और पार्टी भी करनी है, नॉर्मल लाइफ भी जीनी है, और हमको खाना भी सब।
हमने आज कार्यक्रम में बात शुरू की थी कि जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस कुछ में क्या क्या कुछ कुछ होता है। तो खाते समय जरा सा ध्यान रखिए कि हर समय सिर्फ स्वाद को महत्व मत दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपके शरीर के मुताबिक विटामिन्स और मिनरल्स को शरीर में जाने का मौका दीजिए। और फिर ये बात समझ लीजिए कि किसी भी तरह की कोई भी चीज थोड़ा थोड़ा खाने में कोई नुकसान नहीं है, और खास तौर पर विटामिन्स के कॉम्बिनेशंस का भी ख्याल रखिए जो आज हमको बताया इस कार्यक्रम में 20 साल की अनुभवी सीनियर डाइटिशियन कविता पुजारा ने। उनको हम धन्यवाद देते हैं आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आपसे हम आज के इस कार्यक्रम से इजाजत चाहते हैं। आरोग्यवाणी के अगले अंक तक के लिए हमारा नमस्कार।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।